राम राम हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवन, दामोदर देश, सनातन देश, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, दसम स्कंद से 14वें अध्याय में पढ़ रहे हैं। कल 39वां श्लोक पढ़ रहे थे। अनुजानी ही माम कृष्ण सर्वम तोम वेत्सी सर्वदृक तोम एष जगताम नाथो जगत एत तवा अर्पितम। हे प्रिय कृष्ण, अब मुझे अनुमति दीजिए, आज्ञा दीजिए, मैं जाऊं। अब मैं समझ गया, सर्वत्वम वेति से आप सब कुछ जानते हो, सर्वदृक आपकी दृष्टि में सब कुछ है, भूत भविष्य वर्तमान। तमेव जगताम नाथ हो, आप ही जगत के नाथ हैं। जगत एतन त्वाम अर्पितम मैंने कभी अपने आप को इस जगत का मालिक समझा होगा, लेकिन आज मैं समझ गया कि ये आपका है, और ऐसे अनंत और जगत के आप स्वामी हैं, ये जगत भी मैं आपको अर्पण करता हूँ। ये है ब्रह्मा जी का भाव। चक्रपद्धति पाद लिख रहे हैं, तो ब्रह्मा आप पूर्ण रूप से मेरे ऐश्वर्य को नहीं जान सकते, जैसे ब्रह्मा जी ने पहले कहा कि कोई और कहे कि मैं जानता हूँ, कृष्ण को कहने दीजिए, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ मेरे वन से, मन से, कर्म से, वचन से, अथवा भगवान के रूप का, भगवान के वाणी का, भगवान के मन में क्या है, ये मैं नहीं जान सकता। मेरे मन से नहीं जान सकता और भगवान के मन की नहीं जान सकता। तो भगवान कहते हैं, आप अगर नहीं जान सकते हैं तो आपकी शक्ति क्या है, ये तो बताइए। तो कहते मैं कुछ नहीं कह सकता। ब्रह्मा तो लज्जित हो गए और ये प्रार्थना करने लगे अनुजानी ही।
रोजा म्यूट पे आए हुए।
अनुजानी ही, अनुजानी का मतलब आप ही आज्ञा दीजिए, आपका क्या विचार है, मैं तो नहीं जान सकता आपके विषय में। बस एक मेरी प्रार्थना है कि मैं तो आपके सामने तुच्छ हूं, कुछ भी नहीं हूं, योग्य भी नहीं हूं, एक मिनट और आपके यहां रुक जाऊं, आपका दर्शन कर लूं, यही मेरी आशा है। अगर क्योंकि मैं तो आपके परीक्षा लेने की मूर्खता करके पतित हूं, इसलिए मुझे वापस ब्रह्मलोक जाने की अनुमति दीजिए, वही स्थान मेरे लिए है, वृंदावन में रहने का मैं अधिकारी नहीं हूं। यहां कृष्ण कहते हैं, उसका अर्थ है मेरा मन वृंदावन में आकर्षित करो, कृष्ण मेरे मन को आप वृंदावन में आकर्षित करो। मैंने पहले ही कहा है गोकुल में आपको मेरे को घास बना दो, परंतु आपने कोई उत्तर नहीं दिया। आपने दृष्टि भी, कृपा दृष्टि भी नहीं डाली, और ब्रह्मा जी ने इतनी सुंदर प्रार्थना की है, हम एक महीने से कर रहे हैं और भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर देखा तक नहीं, आपने तो अभी तक दृष्टि भी नहीं डाली है, तो अब मैं यहां खड़े होके क्या करूं। अच्छा है मैं यहां से तत्काल चला जाऊं ताकि आप अपने ग्वाल बालों के संग में प्रेम पूर्वक अपनी लीला कर सके। मैं अपराधी हूं, मैंने यमुना के तट पे ग्वाल बालों के संग आपके जो भोजन हो रहा था उसमें विघ्न डाला है। एक भी अमृत का वचन आपके मुख से मैंने नहीं सुना है, मेरा दुर्भाग्य है। आप अपनी मधुर वाणी से अपने मित्रों के संग, ग्वाल बालों के संग यमुना जी के तट पे भोजन करो और विहार करो, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। ऐसी मेरी स्थिति में मैं क्या आपसे पूछूं, इसी भाव से ब्रह्मा जी कहते हैं, आप मेरे मन की गति को जानते हैं, मेरे मन की शक्ति को जानते हैं, मेरे वचनों को जानते हैं, मेरे शरीर को जानते हैं। मैं कोई इस जगत का स्वामी थोड़ी हूं, आप ही स्वामी हैं। एक जगत के नहीं, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के आप स्वामी हैं। ये छोटा सा एक ब्रह्मांड है, वो भी आपकी संपत्ति है, मेरी नहीं है। यही मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। चाहे जिसको चाहे उसको इसका अधिपति बना दीजिए, जो आपके दृष्टि में योग्य हो। मैं तो आपके ब्रज में घास बनूं, ऐसा मेरा भाव है। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, ब्रह्मा जी निम्रता वाली भक्ति को प्रकट कर रहे हैं, और ऐसी निम्रता वाली भक्ति ही भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। और ये निम्रता वाली भक्ति है कि मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं जाऊं आपकी सेवा में लग जाऊं, आपने जो मुझे सेवा दी है वो पूरी करूं। हे कृष्णा, आपका तो ये स्वरूप मेरे मन इंद्रियां सबको आकर्षित करने वाला है, अब आप आज्ञा दीजिए। मैं इसलिए जाना नहीं चाहता हूं कि मैं यहां से जाना चाहता हूं, पर मैं ये जानता हूं कि मैं यहां अधिक रहने का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि आप मेरी प्रार्थना सुन के भी शांत हैं। इसका अर्थ है कुछ बोल नहीं रहे हैं, दृष्टि भी नहीं डाल रहे हैं, कृपा नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ मेरा यहां होना आपको सुकृत नहीं है। आपके और आपके ग्वाल बालों संग लीला में मेरे कारण बाधा पड़ी है, तो इसलिए अब मुझे अनुमति दीजिए। मैंने जो प्रार्थना बार बार वही शब्द कहे जितने मेरे को समझ में आए, आपकी शक्ति को केवल आप ही जान सकते हो, और आप मेरी शक्ति को भी जानते हो, मेरे मन में क्या है ये भी जानते हो, और मैं अनाधिकारी हूं ये भी जानते हो, मैं नहीं जानता। आपकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो फिर एक मैं घास का पत्ता भी कैसे ब्रज में बन सकता हूं आपकी आज्ञा के बिना। अब मैं तो आपके आज्ञा के अनुसार इस ब्रह्मांड की सेवा करनी है, आपने मुझे दिया है वो मैं करूंगा, जैसे सेवक स्वामी की सेवा करता है। तो भगवान ने कहा, जब तक मेरे ग्वाल बाल और बछड़े आपने चुराए हैं, जब तक मैं वापस मेरे को नहीं दोगे, मैं आपको आज्ञा कैसे दूं। अभी तक वो तो आप लाए नहीं हो। क्योंकि आप सब जानते हो, आपको मालूम है कहां है, मैं कहां छुपा सकता हूं आपसे। आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि ग्वाल बाल और बछड़े कहां हैं, वो पहले से आपको पता था। सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, ब्रह्मा जी का जो घमंड था अथवा अहंकार था, थोड़ा सा गर्व था, वो चला गया, और उसके जाने का कारण है भगवान की कृपा जो इस प्रार्थना से उसने प्राप्त की। अब निम्रता पूर्वक ब्रह्मा प्रार्थना कर रहे हैं अपने धाम जाने की। अपने सत्य धाम जाना चाहते हैं, परंतु अब भगवत ज्ञान को भी जान गए हैं, कृष्ण की महिमा को जान गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान की जो महिमा है वो ब्रह्मा के सामने प्रकट की है, और ब्रह्मा जी कहते हैं, आप ही केवल अपनी महिमा को जान सकते हो, क्योंकि आप सर्वदृक हो, सब कुछ सर्वव्यापी हो, तो आप सब जानते हो, आप अनंत हो, क्या मैं आपकी प्रार्थना करूं। अब बस मैं आज्ञा लेता हूं, मैं जाता हूं, मेरी भक्ति को मैं पूर्ण करूंगा, मैं अपने अहंकार को परीक्षा लेने का जो मैंने विचार किया था उसके लिए क्षमा मांगता हूं, और ये सब कुछ मैं आपको अर्पण करता हूं। अथवा ब्रह्मा कह रहे हैं भगवान कहते अभी तो आपने कहा था कि आपको ब्रज में जन्म चाहिए, अब आप जाना क्यों चाह रहे हैं, रुको ना यहां, मैं इस देवता के शरीर में ब्रज में नहीं रह सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं चार माथे वाला ब्रह्मा ब्रज में रहने का अधिकारी नहीं है, ये यहां के लिए उचित नहीं है। अब तो आप अपने ग्वाल बालों के संग में बाल लीला करना चाहते हो और वो तो प्रेम की लीला है, उसमें तो आपके प्रेम का प्रेम के वशीभूत हो जाते हो। हे कृष्णा, हे ब्रजवासियों के मन को हृदय को इंद्रियों को आकर्षण करने वाले, आप जानते हो मैं यहां नहीं रह सकता, इस ऐसे में रहूंगा तो ब्रजवासी कैसे आपके साथ दवा, ब्रजवासी कैसे आपके साथ प्रेम की लीला करेंगे, मेरे को देखेंगे चतुर्मुक्त। ठीक है, फिर भी मैं सब कुछ आपको अर्पण करता हूं कि मैंने जो प्रार्थना की है उसको आप स्वीकार कीजिए। आप तो जगन्नाथ हैं, मैं एक जगत का नाथ आपने बनाया वही आपको अर्पण कर रहा हूं। अथवा ब्रह्मा कह रहे हैं ब्रह्मा आपने जगत बनाया है ना, तो फिर आप इतनी निम्रता क्यों दिखा रहे हैं। जगत बनाने वाले इस सारे ब्रह्मांड के आप अधिपति हो, इतने निम्र क्यों हो गए हो। मैं नहीं हूं जगत का पति, आपका सेवक हूं, आपने बनाने को कहा मैंने बनाया। भगवान कहते ये जगत तो सारे आपके मानसिक पुत्रों से और फिर आपके द्वारा पहले मनु और शत्रुपा और उसके पुत्रों से भरा हुआ है, तो ये तो सारा आपका ही परिवार है, आपका ही वंश है इस जगत में। कहते मैं इसका स्वामी नहीं हूं, आपने इसकी सेवा का काम उदारता से मेरे को दिया है। सो अब 40वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। श्री कृष्ण वृष्णि कुल पुष्कर जोश दायिन क्षमा निरजर द्वेज पशु दधि वृद्धि कारिण उद्रम स्वावर हरक्षति राक्षस द्रुग आकल्पमारक अरकारकम अरहन भगवन नमस्ते। श्री कृष्ण वृष्णि कुल पुष्कर, वृष्णि कुल के कमल, जोशदायन जो आनंद प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं, क्षमा, क्षमा कहते हैं पृथ्वी को, निर्जर देवता, द्वेज ब्राह्मण पशु गाय, उदधि बड़े बड़े समुद्र, वृद्धि इनकी वृद्धि करते हैं, कारिम आप इन सब के पीछे आपका अवतार कारण है, उदरम, उधरम धर्म नहीं, उधरम, उधरम का मतलब नास्तिक धर्म, शारवर अंधकार, हर उसको हरने वाले हैं, क्षिति राक्षस द्रुक, जब धरती के ऊपर असुरों ने अत्याचार किया परंतु इस धरती के ऊपर दुर्क आकल्पम, जब तक ये जगत रहेगा, आरकम सूर्य जब तक प्रकाशित रहेगा, अरहन आपकी पूजा भगवान होती रहेगी, नमः नमस्ते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे श्री कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण, आप वृष्णि वंशों, जो वृष्णि वंश है आपका, उनके ऊपर कमल, आप तो उसके कमल हो वृष्णि वंश के, उनके ऊपर आनंद की वर्षा कीजिए। और महासागर, पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण, गाय, इन सब के ऊपर आशीर्वाद कीजिए। अधर्म अधर्म के अंधकार को नाश कीजिए, जो देव जो असुर ने इस धरती के ऊपर उत्पन्न किया है। हे परम पुरुष भगवान, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, सूर्य रहेगा, प्रकाश करता रहेगा, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता रहूंगा। श्री सनातन स्वामी के अनुसार प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं, यहां ब्रह्मा जी नाम संकीर्तन का आनंद ले रहे हैं। यहां भगवान के नाना प्रकार के नाम श्री कृष्ण के बोल रहे हैं और उनकी नाना प्रकार की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। जो धरती के ऊपर असुरों का भार हुआ था और कंस, जरासतंग, शिशुपाल जैसे असुरों ने धरती को पीड़ित किया था, उनका भगवान ने उद्धार किया। और प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं कि इसी प्रकार आधुनिक जगत में, आधुनिक समाज में ऐसे बहुत सारे देखने में आता है कि भगवान का भय है, परंतु वास्तव में वो असुरी अस्तित्व में आकर्षित है। जैसे सूर्य अस्त होता है, ऐसे चोर चकार बड़े खुश होते हैं। और अंधकार में, इसका मतलब रात में, वो फिर भोग के लिए चाहे रात के नाट्य खानों में जाएं, के क्लबों में जाएं, के रेस्टोरेंट में जाएं, होटलों में जाएं, ऐसे अवैध सारे कार्य रात भर करते हैं, नशा करते हैं, जुआ करते हैं, मांसाहार करते हैं। और दूसरे ऐसे भी हैं जो भगवान को तो मानते ही नहीं है, नास्तिक हैं, और भगवान के नियमों का उल्लंघन करते हैं, वो तो नास्तिक असुर हैं। एक तो नाम में धार्मिक है परंतु काम असुरिक करते हैं, और एक तो सीधे सीधे असुर हैं। ये दोनों तो सामने दिख ही रहे हैं। ये सारे धरती का भार है और भगवान श्री कृष्ण ऐसे असुरी प्रवृत्ति के लोगों का उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं। अब ये क्या लिखते हैं कि यहां ब्रह्मा जी अप्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मन में भी जो सूक्ष्म नास्तिकता का भाव है, और वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण की ऊपर माया डाल के उसको भ्रमित करने का प्रयास किया है, उसको भी भगवान मिटा दें। श्री विष्णु चक्र ठाकुर लिखते हैं, ब्रह्मा लज्जित है, अपने आप को ब्रह्म राक्षस जैसे समझता है, और सत्य लोक से धरती पे आया है कृष्ण की लीलाओं में बाधा और विघ्न डालने के लिए। कितना सुंदर, ग्वाल बालों के संग में भगवान भोजन कर रहे थे और ब्रह्मा जी ने उसमें विघ्न डाला, तो अपने आप को ब्रह्मा जी ब्रह्म राक्षस मान रहा है। और ब्रह्मा जी को आश्चर्य लग रहा है कि इतना सरल छोटे बालक ग्वाल बाल के रूप में कृष्ण कैसे मेरे को दर्शन दिया है, ये मोर पंखधारी, ये पीतांबर धारी कैसे मेरे को दर्शन दिया है। मैंने कैसे परीक्षा ली और इससे इसके ग्वाल बालों को और बछड़ों को हर लिया। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है जो सारे संदेह समाप्त करती हैं और भक्ति का निर्णय करती हैं विश्व के लिए। चक्रवर्ती का पाद कहते हैं कि वो मेरी चेतना में सदा बसी रहे। चक्रवर्ती पाद स्वयं क्या लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण आप मुझसे बात नहीं करना चाहते क्योंकि मैं अपराधी हूं, तो कम से कम एक अमृतमयी दृष्टि तो मेरे ऊपर डाल दो श्री कृष्ण। और ये आपकी कृपा की अमृतमयी दृष्टि ही मेरा आहार होगा, एक कल्प कल्प तक इस पृथ्वी और इस ब्रह्मांड की सेवा में करता रहूंगा। ये भावना है ब्रह्मा जी की। बड़े आदर पूर्वक कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। आप सूर्य हैं, सीधी आंख राइट आपकी आय है वो सूर्य है, जो वृष्णि वंश को अंदर कमल के पुष्प की तरह उनको प्रसन्न कर देती है। और मैं कमल का पुत्र हूं, मैं तो कमल के ऊपर उत्पन्न हुआ हूं, तो मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए, मेरे कमल को भी खिलने दीजिए, आप कृपा की दृष्टि डालिए। आपकी उल्टी आंख तो चंद्रमा है, जो सागर के अंदर चंद्रमा में सागर में छोलियां उठती हैं। और जिसके द्वारा धरती के ऊपर देवताओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए अथवा पक्षियों के लिए, गायों के लिए वृंदावन की आप आनंद दे रहे हैं, तो सीधी आंख से वृष्णि वंशियों को और उल्टी आंख से देवता ब्राह्मण पक्षी गाय इन सबको सुख देते हैं वृंदावन में। मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं भी एक अधम देव हूं और मेरा भी पोषण कीजिए, मुझे भी सुख दीजिए। अज्ञान के अंधकार को आप नाश करने वाले हैं सर वर हर। और ये अंधकार क्या है, बोला उधर्म, नास्तिक धर्म अंधकार है। इसके ऊपर दोनों आंखों की दृष्टि डाल दिए और ये नास्तिकता को नाश कर दीजिए। और मैंने जो आपके ऊपर मोह जाल फैलाना चाहा वो मेरी नास्तिकता थी, उसको नाश कीजिए ये मेरे नाथ, तो पुनः मैं कभी ऐसी गलती न करूं। वो तो ठीक है, इस धरती के ऊपर क्षति रक्षा द्रुक, इस धरती के ऊपर आपने बड़े असुरों का संहार किया, उन्होंने आप वो अघासुर को अपने शरीर में प्रवेश कराया, शिशुपाल को अपने शरीर में प्रवेश कराया, उन्हों को तो आपने मुक्ति दी, तो आप मुझे भी दंडित कीजिए, मैं भी ब्रह्म राक्षस बन गया हूं क्योंकि मैंने आपके बछड़े और ग्वाल बाल चुराए, तो मैं भी राक्षस का ही काम किया, आपके सुख में बाधा डाली। राक्षस दूसरे के सुख में बाधा डालते हैं, मैंने आपके सुख में रुकावट डाली। सेवक को या तो स्वामी प्रेम पूर्वक उसके ऊपर कृपा करे या उसको दंडित दे, ये दोनों नहीं करे। और स्वामी बिल्कुल सेवक को न दया करे और न दंडित करे और कहे कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तो सेवक को बहुत तकलीफ होती है। अगर कृपा नहीं करते हो तो कम से कम मुझे शराब ही दे दीजिए, कुछ दंड दीजिए, तो पता लगे कि मुझे आप अपना समझते हैं। अब तो आप कुछ भी नहीं कह रहे, मुझे कृष्ण आपको प्रसन्न करना चाहिए, जो आप पहले गुंज माला पहन के मोर पंख पहने, जिसको मैंने पहले श्लोक में आपको कहा है, छड़ी हाथ में थी है, अकल्पम, बड़े सुंदर लग रहे थे गुंज माला के साथ, वृंदावन के फूलों की माला पहनी हुई पड़ी हुई थी आपको, अहर्णम में उस भगवान श्री कृष्ण आपके सुंदर रूप को प्रणाम करता हूं। आप कृपा करो या अपनी कृपा को मुझसे, मेरे ऊपर कृपा करो या मेरी मेरे ऊपर कृपा कर रहे हो उसको हटा दो, दोनों में मैं राजी हूं। आप चक्रवर्ती पाद कहते हैं, ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। जो भौतिक प्रभाव को नाश करने वाली हैं, जो सारे सिद्धांतों का सिद्धांत सागर का सार है भक्ति के विषय में, मेरे हृदय में सदा बसी रहे। ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं सारे सिद्धांत सागर का सार है और भक्ति का तो ये निर्णय है, मेरी हृदय में, मेरे हृदय में सदा ये बसी रहे। मैं भगवान की महिमा को ऐश्वर्य को जानकर बड़े आदर पूर्वक उनको प्रणाम करता हूं। पहले भगवान के स्वरूप के नाम का वर्णन किया है कृष्ण, फिर उनके जन्म और उनके कर्मों का वर्णन किया है, जन्म कर्म च मे देव्यम, जो भगवान ने लीलाएं की है, वृष्णि कुल का अर्थ है वसुदेव का कुल और नंद दोनों का, नंद और वसुदेव दोनों वृष्णि वंशी हैं, पहले ये बताया गया है। विशेष रूप से यहां तो नंद के परिवार का ही वर्णन है, क्योंकि गोकुल में तो नंद का पुत्र ही कृष्ण को जानते हैं, इसलिए वृष्णि का यहां अर्थ है नंद बाबा, जीव गोस्वामी कहते हैं। जैसे पहले ही श्लोक में पशुपांग जा कहा है, नंद के पुत्र कहा है, पृथ्वी का अर्थ है गाय, गाय और ब्रगाय और ब्राह्मण, सब जानते हैं गौ ब्राह्मण हित के लिए भगवान का अवतार होता है। और उधर्म का अर्थ है धर्म जो भगवान के विपरीत हो, वो धर्म जिसमें भगवान को न माना जाए। कंस जैसे राक्षस जो नास्तिक धर्म का प्रचार कर रहे थे, कृष्ण को नहीं मान रहे थे, मारना चाह रहे थे, चंद्रमा जो सूर्यों जो 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 समुद्रों में छोलियां पैदा करता है, चंद्रमा ज्वार भाटा आता है समुद्र में चंद्रमा से, और सूर्य कमल को खिलाता है, इससे भगवान की महिमा गाई गई है। भगवान सबके लिए मंगलकारी है, कल्याणकारी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण सभी आपका पूजा करते हैं, भूर भुव स्व गायत्री मंत्र में है इन सब लोगों के, और महावैकुंठ तक अर्कम आर्कम, ये सब आपकी पूजा करते हैं। आप ही बताइए, जो मैंने देखा वो पहले किसी ने देखा है, नहीं देखा है। आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे आजीवन में आपकी सेवा करता रहूं, ऐसी मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और आकल्पम का एक अर्थ है ब्रह्मा जी के दिन पर्यंत, और दूसरा आकल्पम का अर्थ है भगवान जिसका श्रृंगार बहुत सुंदर गुंजमाला से, मोर पंख से, और जो भगवान का स्वरूप जिसको ब्रह्मा जी ने देखा चावल हाथ में लिए हुए दही भात वाले, उसको कहते हैं आकल्पम। आर्कम का दूसरा अर्थ है आर्क नाम के पुष्प, जो ब्रज के पुष्प हैं जो भगवान को अर्पण किए जाते हैं। और लिखा है अर्क के पुष्प, अर्क वृक्ष के पुष्प जो भगवान को अर्पण नहीं किए जाते हैं, मैं आपको आपके अलंकारों सहित, और अर्क का पुष्प भी हो तो जो आदरणीय नहीं है, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। चेतन महाप्रभु की कृपा से श्री राजीव गोस्वामी कहते हैं, और उनके अनुयायियों की कृपा से मैंने ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं को भक्तों के आनंद के लिए अनुवादित किया और इसके ऊपर भाषा की। सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, श्री कृष्ण, श्री का लगाने का मतलब वैसे राधा रानी है, श्री तो राधा रानी है, राधा कृष्ण सब प्रकार से सभी ऐश्वर्य का, प्रकाश का स्वामी श्री कृष्ण, श्री सहित जो सबके हृदय को आकर्षित करते हैं और सब प्रकार से पूर्ण भगवान है, क्योंकि भगवान है तो श्री तो छह गुणों में एक गुण है, तो सारे और गुण भी संपूर्ण भगवान में। अथवा ब्रह्मा कहते हैं संकीर्तन के रूप में भगवान के नामों का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि अब ब्रह्मा के हृदय में बहुत महान भक्ति उत्पन्न हो गई है। और भगवान के अवतार का क्या उद्देश्य है इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, और भगवान के चरणों को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान के प्रकट्य ने वसुदेव और यादवों के दुख को दूर किया, उनको आनंद दिया। जैसे अंधकार से कमल बंद हो जाता है, सूर्य उगता है, खिलता है, ऐसे उनके जीवन का कमल खिला दिया कृष्ण रूपी सूर्य ने उगकर। सबिभर तपशो पौरुषम धाम, ये पहले कहा गया है दूसरे ही अध्याय में। इसके पौरुषम धाम का मतलब सर्व प्रकाशित श्री कृष्ण। और धरती का सारा भार उतार दिया, तो धरती को, देवताओं को, ब्राह्मण को, गाय को, ब्रज को, सब जगह वृद्धि किया, आप ही उसके कारण है। अधर्म का नाश किया, धर्म की स्थापना की, दुख चला गया, सबके लिए सुख का आपने वातावरण बना दिया। और ब्राह्मण गौ सुखी हो गए, अथवा केवल ब्रज के अंदर ही बहुत सुंदर गोवर्धन में झरने और ब्राह्मण, गाय, पक्षी ये सब हैं, इन सब को सुख दिया। और अंत में ब्रह्मा जी प्रेम भक्ति के प्रचार के लिए प्रार्थना कर, अपना जीवन का लक्ष्य है ये प्रार्थना करते हैं। भक्ति के विपरीत जो भी अज्ञान अंधकार है उसको श्री कृष्ण नाश कर दें। उदरम शारवर हर, भक्ति के विपरीत सारे अंधकार को श्री कृष्ण नाश कर दें। धरती के ऊपर असुरों का संहार करने वाले दो प्रकार के असुर हैं, एक तो भक्ति के विरोधी और नास्तिक है, जैसे कंस जैसे जो श्री कृष्ण और उसके वंश के शत्रु हैं। हरे कृष्णा, हे भगवान, हे दयालु, भक्तों की भक्ति की वृद्धि कीजिए कीजिए। आपके अतिरिक्त और नगोर कोई नहीं कर सकता। मेरे आजीवन में आपको भक्ति पूर्वक भजता रहूं, ये मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो यहाँ ब्रह्मा जी की प्रार्थना आज हमने पूर्ण आहुति पे पहुंचाई, आगे भगवान श्री कृष्ण की जो इच्छा होगी। श्री शुक उवाच इति अभिष्टूय भूमानां त्रिः परिकर्म्य पादयोः नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्ये। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसे ब्रह्मा जी ने स्तुति की, भगवान की प्रमा भगवान का परिक्रमा किया, भगवान का पूजन किया और भगवान को प्रणाम भगवान के चरणों में कर अपने लोक के लिए रवाना हुए। भगवान ने तो ब्रह्मा जी ने तो ब्रज में घास बनने का या ब्रज से बाहर ही पत्थर बनने की प्रार्थना की, परंतु भगवान शांत रहे, कुछ उत्तर नहीं दिया, दृष्टि भी नहीं डाली, देखा भी नहीं। इससे ब्रह्मा समझ गया तो कि मुझे वापस अपने धाम जाना चाहिए और सेवा में लगा रहना चाहिए। ब्रह्मा को पहले अपने कर्तव्य कार्य जो भगवान ने उसको ब्रह्मांड के उत्पत्ति का दिया है उसको पूरा कर लें और फिर वो वृंदावन में आएगा आए और ब्रज का भगवान की लीलाओं का रसास्वादन करें। दूसरे शब्दों में जो पहले भगवान की सेवा के कार्य करते हैं वो फिर भगवान के धाम में भगवान की लीला का रसास्वादन करने के अधिकारी बनते हैं, अथवा भगवान के प्रचार के कार्य में बाहर रहना और भगवान की सेवा में रहना केवल वृंदावन में सोए रहने से अच्छा है। वास्तव में क्या चाह रहा था ब्रह्मा? ब्रह्मा चाह रहा था भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य वृंदावन में, संग वृंदावन में, परंतु भगवान की इच्छा थी कि ब्रह्मा जाकर सत्यलोक में अपने कार्य को संभाले। वो अगर नहीं रहेंगे तो ब्रह्मांड का कार्य ठीक नहीं चलेगा। ब्रह्म सूत्र के तर्क वितरक के अनुसार देवता इस जगत में तब तक रहें जब तक उनका कार्यकाल समाप्त न हो, यह ब्रह्म सूत्र का तर्क है। जब ब्रह्मा अपने कार्य को पूरा करेंगे समय तक, जब जितने समय तक उनको सेवा दी गई है, तब वृंदावन में भगवान का सानिध्य ब्रह्मा जी प्राप्त कर सकेंगे। भगवान की परिक्रमा कैसे कर सकते हैं, सर्वत्र भगवान है, जीवा गोस्वामी लिखते हैं, उन्होंने बड़ी महिमा भगवान की गाई, भक्ति पूर्वक भगवान को प्रार्थना किया, तीन बार कृष्ण की परिक्रमा की लिखा है, तीन बार कृष्ण की परिक्रमा की, वैसे विष्णु मंदिर की परिक्रमा चार बार होती है, तीन बार गणेश की परिक्रमा होती है, और किसी ने भाव लिखा है कि ब्रह्मा जी ने विघ्न डाला था तो गणेश की परिक्रमा, जैसे तीन ही परिक्रमा है, और अपने धाम के लिए चले गए क्योंकि भगवान शांत थे, वो जगत धाता है, उनको वही सेवा करनी थी, जब मैं सेवा पूरी करूंगा तो भगवान की सेवा में जाऊंगा, ऐसा उसका भाव है। तो यहां हमारी आज ब्रह्मा जी की स्तुतियां पूरी होती हैं। भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा को अनुमति दी और ब्रह्मा जी वहां से चले गए, तो भगवान ने अपने वास्तविक जो पहले बछड़े थे, अब जो भगवान ग्वाल बाल बने थे, भगवान जो बछड़े बने थे वो अदृश्य हो गए, और उन्होंने अपने बछड़ों को साथ में लिया। एक वर्ष हो चुका था, वो जमुना के किनारे पे लाए, देखा तो ग्वाल बाल अभी वहां बैठे हुए हैं और वन भोजन कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी का तो एक सेकंड गुजरा होगा, लेकिन यहां का धरती का एक वर्ष हो गया। अपने पुत्र को भगवान ने आज्ञा दी, क्षमा कर दिया, ब्रह्मा जी चला गए। अपने पुत्र के ब्रह्मा जी ने कहा, मैं पुत्र हूं आपका, गर्भगत बालक की तरह मुझसे अपराध हुआ, तो भगवान ने उसको पुत्र के समान ही स्नेह पूर्वक विदा किया, ऐसे समझा जाए, लिखते हैं। और पूर्ववत वापस गाय ग्वाल बाल और बछड़े वैसे जैसे पहले थे ऐसे हो गए जमुना के किनारे। तो लंबा तात्पर्य लिखा है, और कुछ नहीं बोलने का मतलब आज्ञा देना। ब्रह्मा ने आज्ञा मांगी थी और भगवान ने आज्ञा दे दी, कहते चुप रहना प्रीति का लक्षण है, इसका मतलब भगवान प्रसन्न हो गए, स्नेह पूर्वक कहा कि जाओ। तो यहाँ आज हम कथा को विराम देते हैं, ये तो बहुत लंबे चौड़ा इसका तात्पर्य है, यहाँ हमारी प्रार्थना पूरी होती है, अब नई प्रार्थना कौन सी होंगी कब होंगी देखेंगे उसको। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है?